फिर आगे देखते हैं शुक्र की फजीलत। ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिससे आपको पता चलेगा। और यहाँ एक छोटी सी बात नोट कीजिएगा कि अल्लाह सुबहाना ताला ने जब आदम को और इबलीस को पैदा किया था ना, तो इबलीस का गुमान जो था आज वो सच समझ आता है कि वला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन, कि तू अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और ये बात हकीकत में सच है कि वह कलीलुम मिन इबादी शुकूर, मेरे बंदों में बहुत थोड़े ही शुक्र वाले हैं। और ये भी बात नोट कीजिएगा कि अल्लाह ने हमसे सिर्फ इबादत का नहीं शुक्र का भी मुतालबा किया है। आगे इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी आयतें हम पढ़ेंगे, रेफरेंस हमने लिखे हुए हैं, सिर्फ गौर व फिक्र करना है आपने। मैंने शुक्र की फजीलत पेज 19 है, शुक्रगुजार बनने के फवायद। शुक्र की बेशुमार फजीलतें हैं कुरान और हदीस में जिनका जिक्र आया है, ताकि इन फजीलतों की बदौलत दिल और जवारेह को वो काम करने का हौसला मिले जिनकी बदौलत शुक्र की नेमत सिमेटी जा सके। क्योंकि देखिए इंसान की फितरत है ना कि जब उसको किसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है ना तो खुशी से लेता है। कोई भी चीज़ कड़वी भी लगे लेकिन कहते हैं इसका फ़ायदा बहुत है तो हम खा लेते हैं कि चलो कड़वी सही फ़ायदे वाली है। तो ये जो फ़ायदे अभी हम पढ़ने लगे हैं इसके बाद क्या होगा कि हमारे लिए शुक्र की नेमत को समेटना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए नंबर एक देखिए, शुक्र निस्फ ईमान है। ईमान को पहले समझेंगे तो फिर निस्फ पे गौर होगा ना। ईमान क्या है? जन्नत में दाखले का सर्टिफिकेट। सबसे पहला फ़ायदा जो ईमान लाने का, जो सबसे बड़ा फ़ायदा ना, कि जन्नत मिलेगी ही ईमान के बाद। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। अब वो ईमान एक करेंसी है, कमोडिटी है। आप इसको अपनी समझ के लिए लिखना चाहें तो ईमान आपका पासपोर्ट है। इंटरनेशनल फ्लाई करने के लिए पासपोर्ट लाजमी है ना, सबको पता है। बच्चा भी नहीं बाहर जा सकता जब तक पासपोर्ट ना हो। आपने मैंने जन्नत की तरफ ट्रैवल करना है तो फर्स्ट उसका जो डॉक्यूमेंट है ना वो ईमान है। अब ईमान कितनी गिनती चीज़ हो गई, समझ आ गई ना। यानी ईमान अपनी जगह एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो आधा ईमान मिल जाता है शुक्र से। तो फिर पहले मेहनत किस पे करें? शुक्र पे। इससे बंदे का ईमान मुकम्मल होता है। सलफ़ सालहीन से इस बारे में बहुत से आसार मिलते हैं। आसार क्या होता है? असर, निशानी। यह हदीस की एक टर्म में एक चीज़ आती है, यानी किसी का कॉल कह लीजिए, यानी एक होती हदीस, तो हदीस के मुकाबले पे एक असर होता है, बस इतना समझ लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा का बयान है। अच्छा मैंने अन्हुमा क्यों कहा? क्योंकि बाप भी मुसलमान तो बेटा भी मुसलमान, अब्दुल्ला बिन मसूद। अरबी में जब भी हदीस में किसी सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हुमा होगा तो ये इस बात की दलील है, बाप बेटा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, यानी अब्दुल्ला पे भी अल्लाह राज़ी हुआ और उसके बाप पे भी। क्या प्यारी टर्म्स है। अल्लाह हमारी औलादों से भी राज़ी हो और हमसे भी राज़ी हो जाए। क्या कहते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद? ईमान के दो हिस्से हैं, एक सब्र और दूसरा शुक्र। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को अपने इस फरमान में जमा किया। सूरत इब्राहिम आयत 5 देखिएगा, इन फी ज़ालिकल आयातिल लिकुल्ली सब्बारिन शकूर। बेशक इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं। इसी मानी की मुनासबत से इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह ने पूरी किताब तालीफ़ की है। अच्छा लफ्ज़ तालीफ़ क्या होता है भाई? ये क्यों नहीं कहा कि पूरी किताब लिखी है? अब ये मैं आप में से उन लोगों को टच करती हूँ जो कुरान पढ़े हुए हैं, जिन्होंने माशाल्लाह कोर्सेज भी किए हुए हैं। देखिए किताब लिखने को कहते हैं तसनीफ़। किसकी तसनीफ़ है? मुसन्निफ़, सनफ़ से। तालीफ़ है अल्लफ़ युअल्लिफ़ से, जोड़ना। तालीफ़ कहते हैं ख़ुद नहीं लिखना, दूसरी चीज़ों को जमा करना। यानी हदीसें नहीं, जैसे अब तफ़ीम सुन्ना सीरीज़ है सभी को पता है आलमोस्ट, तो उसमें इकबाल केलानी साहब ने क्या किया, मुख्तलिफ़ हदीसों को जोड़ दिया। तो आप देखिएगा उस किताब में तालीफ़ आएगा लफ्ज़ लिखा हुआ, तसनीफ़ नहीं होगा, क्योंकि हदीसों को एक टॉपिक में जमा कर दिया। तो यहाँ तालीफ़ है, इसी लफ्ज़ से पता चल जाता है कि उसमें उन्होंने सब्र और शुक्र के मौजू पे कुरान की आयतें और हदीसें या कुछ लोगों के फिर अकवाल भी जमा किए। जिसका नाम क्या है? इद्दतुस्साबिरीन व ज़खीरतुश्शाकिरीन। इद्दतुस्साबिरीन क्या हुआ? इद्दत क्या होती है? गिनती। साबरीन सब्र करने वालों की। ज़खीरा क्या होता है? जमा करना। शाकिरीन शुक्र करने वालों का। आप फरमाते हैं कि शुक्र की मंजिलत बहुत बुलंद है, इसकी मंजिलत से तो रज़ा से भी ज़्यादा है। बस रज़ा तो शुक्र के तहत आती है और शुक्र निस्फ़ ईमान है। اور ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ یہ رضا والا لفظ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ تھوڑا سا بھی وقت اپنے پاس فالتو وقت رکھیں، ایک کتاب ہے اصلاح القلوب، مجھے چیک کرنا پڑے گا، بعد میں دیکھ سکتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایپ پہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے ایڈوانس کورس میں یہ بک پڑھتے ہیں اصلاح القلوب، اس میں 11 ٹاپک ہے اور ہر ٹاپک پہ تقریباً ایک ایک ہفتہ بات ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک ٹاپک ہے رضا۔ یقین کریں جب وہ بک ہم نے پڑھی، میں نے ناروے میں پڑھائی تھی، ابھی پچھلے سال ہی پڑھی ہے، نئی بک ہے، یعنی ابھی ریسنٹلی پڑھی گئی، اب اس کے بعد ہمارے کورسز کا وہ حصہ ہے۔ جس جگہ اسٹوڈنٹس نے وہ بک پڑھی، اور میں نے خود بھی جب پڑھائی تو ہم نے سیم چیز فیل کی۔ اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ صبر کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہوتا ہے، رضا کیا ہوتی ہے، تسلیم کیا ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے نام سنے ہوئے تھے بس، حالانکہ ہم شروع سے یہ نام جانتے ہیں۔ تو اپنا علمی ذخیرہ بڑھائیں، کتابوں کا شوق پیدا کریں۔ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، اتنے خوش قسمت ہیں، کبھی باہر کے ملکوں میں کہیں بک کا نام لے تو دوں، بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے ملے گی، ہمیں منگا دیں گے، پھر شپنگ اور کیا مسئلے۔ آپ اپنے پاکٹ منی میں سے ہر مہینے ایک کتاب خریدا کریں، خود خریدیں۔ جو کتاب خریدتا ہے نا بندہ وہی پڑھتا ہے، مفت کی بات کا کوئی مزہ نہیں آتا۔ آپ یہ بک خرید لیں، موٹی بک ہے، دو بک ہیں، ایک مفسدات القلوب اور ایک اصلاح القلوب ہے، اپوزٹ ہے۔ یقین کریں آپ کا کم از کم یہ ایک دو مہینے کا ذخیرہ آئے گا۔ رات سونے سے پہلے 2-3 صفحے پڑھ لیں، سننا چاہیں ساتھ سن بھی لیں، لیکن پڑھیں، آپ کا دل کھل جائے گا۔ یہی بات انہوں نے اس میں لکھی ہے کہ رضا سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ شکر اور رضا اور صبر، ان تین چیزوں کو جمع کر دیں تو تعلق باللہ کی مضبوط بنیادیں ہیں۔ یہ کیا پتہ چلا کہ شکر کا مقام بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ شکر کرنا آسان ہے کہ صبر؟ شکر آسان ہے، اور شیطان اسی کو مشکل کرتا ہے۔ صبر کرنا نسبتاً آسان ہے، کیوں؟ کہ جب تکلیف یا دکھ یا بیماری یا کسی کی موت ہوتی ہے نا، تو ہماری فطرت پہ پڑے ہوئے سارے پردے اتر جاتے ہیں، ہم اپنی اصل میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کسی مرگ والے گھر میں کسی نے مکس گیدرنگ کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ فطرت پہ پڑا ہوا پردہ اتر گیا۔ خوشی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں ہم کہتے ہیں نہیں اب یہ کیسے ہوگا، اب وہ کیسے ہو سکتا ہے، فیملیوں کو بانٹ دیں اور جی فیملی کے ساتھ ہی رہنا۔ وہ مرد جو سارا سارا دن گھر نہیں آتے، ایسے موقعوں پہ ان کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی کیا پتہ چلا کہ شکر کرنا نسبتاً مشکل ہے، وجہ کیا ہے؟ اکڑ آنے لگتی ہے، وہ جس کو بندہ پنجابی میں کہتا ہے چوڑا ہونے لگتا ہے، ہم خوشیوں میں چوڑے ہو جاتے ہیں، آبا اے اللہ ہمارے ساتھ پوچھے۔ تو شکر اور رضا ملے گی، آپ کا ایمان پورا ہو جائے گا۔ اور یہ وہ سبق ہے جو بچے کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، کل کا ایک درس تھا، اس میں میں نے یہ بات کی کہ ہم میں سے اکثر کو بچپن سے جو نیکی کا سب سے ٹاپ موسٹ ذریعہ دکھائے، مطلب یہ روف ہے نا، وہ کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جو نمازی، روزے دار، حج، زکوٰۃ، پردہ کر لے، داڑھی رکھ لے، ہم کہتے ہیں اب اس کے بعد اور کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک اسٹوڈنٹ کو کہہ ہی دیا کہ ماسٹر سے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا آگے سوچے گا؟ ہمارے کلچر میں ان ساری عبادات کو منزل بنا دیا گیا، حالانکہ یہ سیڑھی تھی۔ ان سب کے بعد جو چاہیے وہ نہیں کر رہے ہوں، ہمارا آج کا ایشو بھی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں۔ تو پہلی فضیلت کیا ہے؟ کہ شکر نصف ایمان ہے۔ ایمان لانا چاہتے ہیں، شکر کیجئے۔ اور اس پہ تو بہت کچھ ہے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہی یاد کر لیجئے، کیا جب الامر المومن۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، صبر کے بدلے جنت۔ خوشی پہنچتی ہے، شکر کرتا ہے، شکر کا بدلہ جنت۔ مجھے ایسے لگتا ہے ایک گھر ہے، اس کے اندر آنے کے دو دروازے ہیں۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا، لمبی گلی ہے، ایک ادھر اس گلی میں دروازہ ہے، ایک بیک ڈور بھی ہوگا۔ ایک ڈور فرنٹ ہے تو شکر ہے، تو بیک ڈور صبر ہے۔ جنت میں جانے کے لیے یا شکر کے دروازے سے گزری ہے یا صبر کے دروازے سے گزرے۔ اور یہ جملہ بھی لکھ لے کہ جتنا صبر بڑھے گا نا، اتنا شکر بھی بڑھے گا۔ میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں، آپ کی سیریز کا جیم بنا دیں، کہ جو صابر ہوگا وہ ضرور شاکر ہوگا، اور جو شاکر ہوگی یا ہوگی شاکرہ، وہ صابرہ ضرور ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف صبر بہت کر رہے ہیں لیکن شکر نہیں کر رہے، وہ پھر وقتی صبر ہوتا ہے، وہ اس کی اصل نہیں ہوتی۔ جیسے سی ساو کو دیکھے، وہ بچے جھولا جھولتے ہیں نا، ایک کو نیچے جاتے ہیں تو دوسرا ٹاپ پہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا اوپر آتا ہے، تو یہ صبر اور شکر ایک سیسا کی طرح اوپر نیچے رہتے ہیں۔ बैलेंस पे रहिए, अपनी ज़िंदगी के दुखों को दुख ना बनाएं। कोई हक नहीं है आपको मुझे दुखी रहने का। चेहरे पे स्माइल लाएं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको तफक्कुरात की। मैं आज शुक्र पढ़ा रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे सब्र भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग दुखी दिखते हैं मुझे, रात जाते के गम जान को सुहेड़े में। तवक्कुल है पर उसका असर दिल पे नहीं दिखता। अब दूसरी फजीलत है शुक्र रज़ाए इलाही का एक ज़रिया। पहले तो टॉपिक की खूबसूरती समझिए, शुक्र रज़ाए इलाही का एक ज़रिया, यानी अल्लाह की रज़ा ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। बस ये लिख लें, जन्नत की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत वो अल्लाह की रज़ा। जन्नतियों को सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद अल्लाह ताला पूछेगा कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो कहेंगे कि और क्या देना है, तो जन्नती पूछेंगे कि अल्लाह ताला आपने सब कुछ तो हमें दे दिया, अब और क्या देना है। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि आज मैं तुम्हें अपनी रज़ा देता हूँ, कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो शुक्र से अल्लाह की रज़ा मिलती है। अगर बंदा शुक्रगुजारी की रविश पर कायम रहे तो अल्लाह इससे राज़ी होता है और इसके शुक्र अदा करने से भी राज़ी होता है, इसकी काविशों को कबूल फरमाता है। करते हैं कोशिश अल्लाह के रस्तों में, तो उसकी कबूलियत की वजह शुक्रगुजारी है। बस बंदे को अल्लाह की रज़ा तब हासिल हो सकती है जबकि वो शुक्र अदा करता रहे, जैसे फरमाने बारी ताला है सूरत ज़ुमर आयत 7, वइन तशकुरु यरदहु लकुम, अगर तुम शुक्र अदा करो तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करता है, यानी राज़ी होगा। तो क्या पता चली दूसरी चीज़ कि शुक्र की फजीलत क्या है, कि शुक्र से अल्लाह की रज़ा चाहिए, रज़ा मिलती है। ये बताइए कि आप में से मेरे में से किस किस को अल्लाह की रज़ा चाहिए। आप देखिए सारी भाग दौड़, फजर से तहज्जुद से उठने से लेकर सारे दिन की छोटी बड़ी नेकियाँ, जिसमें हकूकुल्ला से हकूकुल इबाद भी हैं, उसका लुबे लुबाब क्या है, हम क्या चाहते हैं, अल्लाह राज़ी हो जाए। कितनी बड़ी दौलत है। तो अल्लाह किससे राज़ी हो रहा है, शुक्र से। कैसे राज़ी होता है ज़रा सा समझें। मुझे तो हमेशा माँ की मिसाल से समझ आती है बात अल्लाह की। आप देखिए कि एक माँ सारा दिन अपने बच्चे के लिए मेहनत करती, तड़पती, सोचती, उठती बैठती, और एक दफ़ा सोने से पहले बच्चा गले में बाहें डाल दे कि मामा थैंक यू, मामा आपने मेरे लिए बहुत किया, मामा यू आर बेस्ट मॉम, आप सबसे अच्छी अम्मी हैं, तो माँ की थकन दूर होगी। सिर्फ चंद लफ्ज़ होते हैं जो हमारे अंदर के वो तनाव को कम कर देते हैं। आप थके टूटे इतनी मेहनत की, सारा दिन मेहमानों को देखते रहे, रात को कोई सोने से पहले आपको शुक्रिया अदा कर दे, बहुत शुक्रिया बहू, तुमने आज बहुत काम किया, बेटा आज तुमने बहुत मेहनत की। देखिए ना, सारा दिन लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं ना। अब आप में से कोई सासें बैठी होंगी, कोई बहुएँ होंगी, कोई बेटियाँ, कोई नंदे देवरानियाँ, घर जाके लड़िएगा नहीं, लेकिन घर में ऐसे ही होता है ना। चले अगर दो देवरानी जेठानियाँ भी हैं तो एक दिन आप खाना बनाती होंगी, दूसरे दिन वो बनाती होंगी, जो हमारा एक कल्चर है। आम तौर पर घरों में हम काम बांट लेते हैं ना, बहनें भी होती हैं। आज से एक नियत कर लें, जिस दिन दूसरे ने कुछ किया या दूसरी ने किया, बेटी ने कर दिया, बहू ने कर दिया, देवरानी ने कर, मैंने उसका सोने से पहले शुक्रिया अदा करना। और जब कोई चीज़ आपके सामने आए, बेटा शुक्रिया, बेटा तुमने कितना अच्छा किया, बेटा बड़ा अच्छा बना। कुछ भी करें, आपके शौहर घर में सौदा सवलफ तो लाते ही होंगे ना, बाप भाई कोई भी लाता है, जब ग्रोसरी का बैग पकड़े क्या कहें, शुक्रिया जजाकला। हम क्या कहते हैं, टमाटर नहीं लाए, तो जो 10 चीज़ें लाए हैं वो तो लानी थी आपने। शुक्र बहुत थोड़ा करते हैं लोग, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज़ शुक्रिया बोले अगले की सारी थकन दूर हो जाती, वो खुद ही कह देगा टमाटर नहीं लाया। हमारी हमेशा नज़र अगले, ऐ नहीं यूँ कीता, अच्छा खाना खाते जाएंगे, ए हल्दी काट है, मिर्चा मोतियाँ नहीं पै गई, अच्छा पुनिया काट है, हाँ मेरी पंजाबी सबको समझ आ रही है, एक जुमला तो बोल दें, मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरे माँ, कोई भी जो भी पकाता खाता है, बड़ा अच्छा बना। आप देखिए उसकी लज्जत ही और होगी, इतना टेस्टी खाना नहीं होता जितना शुक्र के साथ खाने पर उसका टेस्ट आता है। तो अपने इर्द गिर्द वालों के साथ शुक्रगुजार रहें, बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने हमें बचाया हुआ है। हर बंदे के शुक्रगुजार रहें, आप अपने बच्चों के भी शुक्रगुजार रहा करें कि वो आपको सब्र का मौका देते हैं। बच्चा रो रहा है, आप कहते हैं मैं इसका क्या शुक्रिया अदा करूँ, भाई उसने आपको सब्र का मौका दिया। कोई आपको ताने दे रहा है, डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, جھڑکیاں دے رہا ہے، آپ اس کا بھی شکریہ بولے، کیوں؟ کہ آپ کی وجہ سے مجھے صبر کا موقع ملا. اب بتائیے ایسے بندے کو کون ناراض کر سکتا ہے؟ تیسری چیز دیکھیے، فضیلت ہے شکر میں، عبادت ہے شکر. ہم میں سے ہر ایک سارا دن نماز روزے کی کیفیت میں رہ سکتا ہے؟ بتائیے، کیا میں اور آپ سارا دن نماز اور قرآن کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھی تو قرآن پکڑ لیے، قرآن چھوڑا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک جملہ لکھیے، اکثر میں نماز کی کیفیت میں بولتی ہوں اور یہاں بھی لکھ لیجئے، اور وہ کیا ہے؟ انسان 24 گھنٹے نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتا، لیکن اس کی کیفیت میں رہ سکتا ہے. کیفیت نماز کیا؟ شکر. مثلا آپ مصلی پہ بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، کیفیت ہی نا. آپ کی وہ کیفیت جو عبادت کے دوران تھی، اللہ سے پیار، اگر آپ اس کو دن رات اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو 24 گھنٹے آپ نماز میں ہیں. یہی نماز سکھاتی ہے کہ دن میں 5 دفعہ جھک جاؤ تاکہ تمہیں جھکنا آئے. ٹھیک ہے، تو شکر کیا ہے؟ عبادت ہے. بلکہ شکر حقیقی بندگی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید میں شکر اور عبادت کو ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے. یعنی یہ دو لفظ اکٹھے دکھیں گے آپ کو. مثلاً سورت سبا آیت 13، قلیل من عبادی الشکور، کم ہی میرے بندوں میں سے شکر گزار ہے. ویسے میرا خیال ہے اگر انسان شرمندہ ہونا چاہے نا قرآن پڑھ کر تو اس آیت پہ ہو جائے. یہ مالک کائنات کا شکوہ ہے کہ ہو تو میرے ہی بندے لیکن شکر تھوڑا کرتے ہو. یہاں دیکھیے لفظ عباد کے ساتھ شکور آ گیا. پھر اسی طرح سورت بقرہ آیت 172، وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. کیا پتہ چلا شکر اور عبادت کا تعلق ہے. نیز فرمایا سورت عنکبوت آیت 17، واعبدوہ وشکرو لہ الیہ ترجعون، اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. کیا پتہ چلا شکر اور عبادت اکٹھا ساتھ چلتا ہے. یعنی جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی اس کا شکر بجا لاتا ہے، اور جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں اس کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہے. چلیے چند جملے لکھیے. لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ وضو کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوپٹے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ٹوپی پہنے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا وہ ساکس پہ مسا کرے تو نماز ہو جاتی ہے؟ یعنی میں فقہی مسئلے بتا رہی ہوں کہ لوگ عموماً ایسے سوالات پوچھتے ہیں. آج آپ نے ایک سوال خود سے پوچھنا ہے، کیا شکر کے بغیر نماز قبول ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہوتی. اگر دل سے آپ راضی کوئی نہیں ہے رب سے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ صرف ٹکرے ہیں. آج سے جو کام نماز کے ساتھ آپ نے میں نے خاص کر لینا ہے، 5 وقت کی نماز، 17 رکعتیں کم از کم ہے نا، تو 5 دفعہ کا شکر اور 17 بار کا کم سے کم شکر کرنا ہے. ہر نماز سے پہلے چند منٹ کھڑے ہو کے کہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری زندگی میں یہ نماز کا وقت لایا ہے. اگر ہم ابھی ظہر کے بعد فوت ہو چکے ہوتے عصر کے بعد، تو اب یہ اگلی مغرب ہمارے نصیب میں نہیں تھی. کون پڑھے گا ابھی مغرب؟ کس پہ فرض ہے مغرب؟ جو زندہ ہوگا. یہاں میری زندگی کا پرچہ کٹا، میری نماز ماں. تو آج کے بعد ہر اذان جو بھی اگلی نماز کی آئے تو ساتھ کیا کہے؟ اللہ تیرا شکر ہے میں زندہ ہوں، میرے کانوں نے اذان سنی، اب میں نماز پڑھوں گی. بتائیے نماز بوجھ لگے گی کہ شکرانہ لگے گی؟ ایک اور جملہ پھر لکھ لے اسی سے ملتا ہوا، کہ ہر نماز اس وقت تک جینے کا شکرانہ ہے. بات سمجھے؟ ہر نماز اس بات کا شکرانہ ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی فضیلت دیکھیے شکر کی، شکر کرنا انبیاء کی صفات میں سے ایک ہے. عموماً دنیا میں لوگ بڑے لوگوں کے عملوں کو دیکھتے ہیں نا، فلاں کیا کھاتا ہے، فلاں فلاں کرکٹر اور پلیئر اور گلوکار اور جو بھی ہر ایک کا فیوریٹ کوئی بھی ہیرو ہوتا ہے. ہماری نظر میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے انسانوں میں؟ رسولوں کا اور انبیاء کا، اور وہ ہمارے رول ماڈل ہوئے نا. تل کا رسول قد فضلنا بعدہم علی بعد، تو نبیوں کا شعار کیا تھا کہ وہ شکر کرتے تھے، اس کو پڑھیے گا. اور میں اکثر حیران ہوتی ہوں قرآن میں سے انبیاء کی کہانیاں پڑھ کے. آپ سب نے تفسیر کم و بیش کہیں نہ کہیں سے پڑھی ہوگی، تو ارے قرآن میں تو ترجمہ سنا ہی ہے نا. आपको पूरे कुरान में कहीं भी अंबिया कराम की इबादात, नमाजें, तस्बीह नमाजें, इसका तذکرہ नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का तذکرہ मिलेगा, अभी आप देखेंगे सूरह नहल में भी, कि वो शुक्र करते थे। कैसे? अल्लाह ने वाज़े कर दिया है कि शुक्र इबादत की अजीम इकसाम में से है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में ज़िक्र है कि जब इन्हें अल्लाह की वहदानियत का रास्ता मिल गया तो उन्होंने शुक्र के साथ अल्लाह की हम्द की। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत नहल 120, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लियन उमिही। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, अल्लाह के फरमाबरदार और यकसू थे, और वो मुशरिकों में से नहीं थे, उसकी नेमतों पर शुक्र करने वाले थे। यानी वो एक उम्मत थे इसलिए कि वो अमल करने वालों के लिए बेहतरीन नमूना थे। जो नेकी का काम करना चाहें वो कानित थे, यानी हमेशा इताअत पर कायम रहने वाले थे, बिल्कुल इखलास के साथ अल्लाह ही के लिए यकसू थे। आयत का इख्तिताम शुक्र की सिफत पर किया, यानी इनकी ज़िंदगी की गर्ज़ो गायत अल्लाह के शुक्र को करार दिया। अल्लाह ने दूसरी जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से फरमाया सूरत इब्राहीम 39, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद्दुआ। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। यहाँ पे हज़रत इब्राहीम का किस्सा पूरा होता है, थोड़ी सी बात समझिएगा। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी सिफात शुक्र के ज़िम्मे में क्या आई। हम अमूमन क्या कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, ना शुक्री की बात है, लोग कहते हैं दिया ही क्या जिस पर शुक्र करें, मिला ही क्या, जो नेमत मिल जाए उसको नेमत नहीं समझते। फिर कोई काम करने की बात करें कहते हैं मेरे हालात अभी ठीक नहीं हैं, अभी मेरे हालात मुवाफिक नहीं हैं। अच्छा जी, और तीसरा जुर्म मेरे रिसोर्सेस नहीं हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, वसाइल की कमी है। बस बड़ा दिल करता है नेकी के काम करें, वसाइल की कमी है, ये सब झूठ है। इब्राहिम की बात कीजिए, वसाइल थे उनके पास। जिस बच्चे को 8-9 साल की उम्र में बाप धमकियाँ दे दे कि लारजुमन्नक, तुझे मैं रजम कर दूंगा और मेरी नज़रों से दूर हो जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना गेट आउट, वो लफ्ज़ हैं सूरत मरियम में, दूर मेरी नज़रों से चला जा, मुझे नज़र भी ना आए तू, उस बच्चे के पास क्या रिसोर्सेज थे, क्या वसाइल थे। जिस बच्चे को जवान होने तक कितनी हिजरतें करनी पड़े, और छोड़ दीजिए जिसके लिए मुल्क का हुक्मरान आग का लौ तैयार कर ले, बताइए उसके पास क्या हालात सरकमस्टांसेस अच्छे थे। एक जुमला लिख लीजिए, अगर आप अल्लाह के शाकिर बंदे बनना चाहते हैं हालात का रोना रोना छोड़ दें। मेरे आपके हालात कभी ठीक नहीं होंगे अगर आज ठीक नहीं है तो। मैं कभी दीन का काम नहीं करूँगी अगर मैं आज नहीं कर रही। और मैं आज के अपने मुसलमान बहन भाइयों को देख कर कहती हूँ, अगर हमने नहीं कर देना दीन के काम तो दुनिया में किसी के ऊपर फ़र्ज नहीं है। जितनी नेमतें हमारे पास है, जितनी आसूदगी हमारे पास है, जितनी आसाइशें, क्या कमी क्या हमारी ज़िंदगी में, शुक्र की कमी है। आपका पेट भर गया अल्लाह के हुक्म से, 2/3 पेट में खाना चला गया, तन पे मोटा कपड़ा है, सोने के लिए रात को बिस्तर भी है, गर्मी सर्दी का इंतज़ाम है, बस आप बादशाह हैं, बाकी सिर्फ तईशात और तकाबुल है। और जो चीज़ मैंने बहुत महसूस की है, तकाबुल, तकाबुल हमें शुक्रगुजार नहीं बनने देता। हम अपने दूसरे भाई और बहन की गाड़ी को देखकर कुड़ते हैं क्योंकि उनकी लेटेस्ट ब्रांड की है, हमारी बेचारी फटीचर है, पर ये नहीं देखते कि वो मासी जो रोज़ हमारे बर्तन धो के जाती है, पूरा महीना काम करके फिर 1000 रुपया लेती है बर्तन धोने का, उससे मैं बेहतर हूँ कि नहीं, उसके पास तो गाड़ी छोड़िए मोटरसाइकिल भी नहीं है। खुश रहना चाहते हैं ना, अपने से नीचे देखें, और दुखी रहना है तो जितनों को ऊपर देखें। ये जो पिछले 10-15 साल, 15 तो नहीं मैं कहूँगी 10-12 साल गुजरे हैं ना, इसने हम मुसलमानों को बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस बना दिया, ब्रांड कॉन्शियस बन गए। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास ये चीज़ ज़रूरत पूरी कर रही है कि नहीं, हम कहते इसका ब्रांड क्या है, हम कहते ब्रांडेड पहनेंगे जैसा भी हो, तो फिर ब्रांडेड पहन के भी खुश हो जाएं तो बड़ी बात है। नहीं, आपसे ऊंचा ब्रांड दूसरे ने देख लिया, आप दुखी हो गए। सिर्फ वो बंदा खुश होगा जो मौजूदा रिसोर्सेज पर राजी है। एक मौके पे हम लोग क्लास में थे, कोई चल रहा था मौजू, पता नहीं क्या बात हुई, तो उसमें ये आया था कि अगर अचानक आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो मैंने सारी क्लास में डिफरेंट लोगों से पूछा, कई जगह ये एक्टिविटी की है, एक जगह से ज़्यादा, यंग बच्चियों में ज़्यादा ऐसी होती है। एक कहने लगी मैं सारा अल्लाह के रास्ते में दे दूँगी, दूसरी ने कहा मैं आधा दे दूँगी, तीसरी ने कहा मैं उसमें तीसरा हिस्सा दूँगी, किसी ने कुछ रिश्तेदारों को, जो भी कह सकता था, हर एक ने वहाँ बैठ के खूब बातें की। तो मैंने फिर वहाँ सब कैंट पे यही कहा था, ये जो बात आपने सबने कही है ना, ये नहीं होगी। क्यों? आप कहती हैं मैं सारा दे दूंगी, तो आज जो है वो सारा दीजिए। अगर जो मेरे पास आज है, मिसाल 1 करोड़ नहीं है, 1 लाख है, तो मैं 1 लाख दे रही हूँ अल्लाह के रास्ते में, तो सॉरी मैं 1 करोड़ भी नहीं दूंगी। उस दिन तो मेरा दिल और भी तंग हुआ होगा, मालूम ज़्यादा होता है ना, दिल तंग होता है। अच्छा आप कहते हैं मैं आधा दे दूंगी, तो चलिए आज 1 लाख में से आधा दिया आपने। यानी अगर मैं आज नहीं कर रही तो कल मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, और ज़रूरतें खड़ी हो जाती हैं, और मजबूरियों के सांचे में पड़ता है। छोटा बंदा छोटे चक्कर में होता है, बड़ा बंदा तो बड़े चक्कर में आ जाता है। तो जो नेकी करनी है आज कीजिए। और इब्राहिम को कहा ना, उम्मतन क्यों कहा? एक इब्राहिम वो काम कर गए जो पूरी उम्मत नहीं करती। अल्लाह हमें भी आज इब्राहिम के नक्शे कदम पर चला दे। और कानित कैसे थे? दवाम, हमारी तरह ये नहीं कि कोई मुश्किल पड़ी तो उस वक्त मसल्ले भी निकाल लिए और सदके भी दे दिए। कनूत क्या होता है? आजजी और दवा, एवर लास्ट, हर वक्त। कुछ लोग होते हैं हमेशा एक जैसे ही होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैंने आजकल डाइटिंग शुरू की हुई है, मुझे पता है कि आप 15 दिन बाद छोड़ देंगे, जब शादी गुजर जाएगी आपने डाइटिंग छोड़ देनी है, आप कभी पतले नहीं होंगे। कौन है? जो कानित बन के खाए ही थोड़ा, ये रास्ता है, ये मंजिल तो नहीं है। तो क्या पता चला? मुस्तकिल नेकियां करना, ये जो हमारे अंदर सिफत आ जाती है ना कि रमज़ान में बहुत नेकियां, 5 सिपारे पड़ जाते हैं और फिर शायद पूरे साल में हम एक कुरान भी नहीं पढ़ पाते, ये ठीक नहीं है। तो ये दो चीज़ें ले लीजिए इब्राहिम से, तो बेहतरीन नमूना है आपके मेरे लिए। कौन सी? कानित थे, हमेशा नेकी करते थे, और उम्मत थे, रिसोर्सेस की बात नहीं करते थे। आज की नेकी कर लें, कल की खुद ही आसान होगी। आप एक नेकी को छोड़ते हैं ना, दूसरी ऐसी, जैसे रेल का डब्बा एक छूट जाए ना तो अगला भी छूट जाता है, या आपका एक कनेक्शन छूट जाए तो अगली फ्लाइट भी मिस हो जाती है। एक नेकी अपना लें, आज आप आए ना, एक नेकी थी आपने पकड़ ली, आप ज़रूर कल आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे कोई उज़र रोक, आ जाएगा तो आ जाएगा, और अगर आप आज ना आते ना, कल नहीं आते, इल्ला माशाल्लाह। नेकियाँ फैमिली की तरह होती हैं, एक नेकी के साथ एक ख़ानदान आता है नेकियों का। आपने एक पकड़ी थी, उसके साथ 4 नेकियां रास्ते में आपको और भी मिल जाएंगी। अल्लाह ताला हमें नेकियों की कदर की तौफीक दे।